प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की यात्रा समाप्त करने के बाद वियना से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चार दशकों के बाद ये उच्च स्तरीय यात्रा भारत ऑस्ट्रिया संबंधों को व्यापक और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंध केवल सरकारों द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इन संबंधों को मजबूत करने के लिए लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। वियना में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से भारत और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग छोर पर स्थित हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच काफी समानताएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र दोनों देशों को जोड़ता है। श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता, समानता, बहुलवाद और कानून के शासन के प्रति सम्मान हमारे साझा मूल्य हैं। श्री मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रिया में कुछ महीनों में चुनाव होंगे, जबकि भारत में लोगों ने हाल ही में लोकतंत्र का त्योहार मनाया। उन्होंने कहा कि हाल के चुनाव में 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया और कुछ ही घंटों में नतीजे घोषित हो गए। ये भारत के चुनावी लोकतंत्र की ताकत है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद करेंगे। श्री मोदी आगामी केंद्रीय बजट पर अपने विचार और सुझाव देंगे। बैठक में अर्थशास्त्रियों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भाग लेंगे। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलाई को लोकसभा में इस वित्त वर्ष का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। यह आयोजन बिम्स्टेक समूह के सदस्यों को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का पहला संस्करण पिछले वर्ष जुलाई में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक बहुआयामी सहयोग के लिए 7 दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अगले 3-4 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की की राष्ट्रीय समिति की कार्यकारी बैठक में श्री गोयल ने कहा कि सरकार देश को एक विनिर्माण केंद्र बनाने, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल करने और अधिक क्षमता केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव कराया गया। पश्चिम बंगाल के 4 विधानसभा क्षेत्रों रायगंज, बागदा, राणाघाट दक्षिण और मानिकतला के उपचुनाव में 62.71% मतदान दर्ज किया गया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ में 49.8% और मंगलौर में 68.24% मतदान हुआ। मध्यप्रदेश के अमरवाड़ा में 78.71%, तमिलनाडु के विक्रवाण्डी में 82.48% और पंजाब के जालंधर पश्चिम में 51.3% वोट डाले गए। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में सबसे अधिक 79% से अधिक मतदान हुआ। हमीरपुर में 67.7% और देहरा में 65.2% वोट डाले गए। बिहार के रुपौली में 57.25% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कटाव के कारण अपनी कृषि भूमि खोने वाले किसानों को पट्टे पर भूमि देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया तथा बचाव और राहत अभियान की समीक्षा की। नदी जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा और बांध का पानी छोड़े जाने के कारण पीलीभीत, लखीमपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजिस्कोवा का सामना कजाकिस्तान की एलना रायबाकिना से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में क्रोएशिया की दो वेकिक और इटली की जैस्मीन पाओलिन आमने सामने होंगी। टेनिस में भारत के एन श्रीराम बालाजी और इक्वाडोर के उनके जोड़ीदार गोंजालो एस्कोबार जर्मनी के बैशिंग में ब्रावो ओपन चैलेंजर्स के पुरुषों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।